शांति। आज के प्रातःकालीन सत्र में हमारे बीच में पधारे हैं आदरणीय राजयोगी डॉक्टर प्रेम मसन भाई जी। एक हाथ हिलाकर भ्राता जी का स्वागत, सत्कार, अभिनंदन। आप सेठों की नगरी इंदौर से निकले ईश्वर के अनमोल रतन हैं। इंदौर मेडिकल कॉलेज से 79 में आपने मेडिकल की डिग्री प्राप्त की ऑन्कोलॉजिस्ट में, और 80 में आपने बाबा का ज्ञान प्राप्त किया। बाबा का ज्ञान और मेडिकल डिग्री लेकर आप विदेश गए, जहां पर 10 वर्षों तक अमेरिका, साउथ अमेरिका में मेडिकल प्रोफेशन की प्रैक्टिस की, और पुनः भारत में आकर 5 वर्षों तक मुंबई में प्रैक्टिस की, और उसके बाद 1995 में 6 में जब यहाँ ज्ञान सरोवर का उद्घाटन हुआ, आप यहाँ आ गए, और तब से लेकर आप हेडक्वार्टर में रह रहे हैं। बाल ब्रह्मचारी हैं और अपनी सेवाएं, ऑनररी सेवाएं देते हैं मेडिकल, जो हमारे नीचे एवर हेल्दी हॉस्पिटल है, डिस्पेंसरी है। इसके साथ साथ आप हमारे मेडिकल विंग से भी जुड़े हुए हैं, और पूरे भारत भर तो क्या विश्व भर में सेवाओं अर्थ भ्रमण करते रहते हैं। आज हमारे बीच में है नथिंग न्यू की स्मृति के फायदे क्या है, कैसे इस स्मृति से हम विघ्नों से पार हो सकते हैं, इसकी गहराई हमें समझाएंगे, मार्गदर्शन देंगे आदरणीय भ्राता जी।
ओम शांति। पहले हाथ उठाएं और कहें सब कुछ ठीक है, आई एम ओके, आई एम हेल्दी। सांस लें और छोड़ें। सारे ज्ञान का सार, चारों सब्जेक्ट का सार एक शब्द में आ जाता है, वो है स्मृति। स्मृति को कहें कॉन्शियसनेस, मेमोरी। बाबा ने आकर हमारे को हमारे ही जन्मों की स्मृति दिलाई, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। हमारे जो चार एरिया हैं, चारों में कॉन्शियसनेस में, स्मृति में अवेयरनेस क्रिएट किया। अगर और अच्छा शब्द लें तो अवेयरनेस। जब मैं अवेयर हो गया, कॉन्शियस हो गया, तो मेरा हर कार्य पर अटेंशन नेचुरल हो गया। अभी तक जो मेरे साथ होता था, घटनाएं, टकराव, प्रॉब्लम, उनको मैं थोड़ा इमोशनली सीरियस लेता था, पर जैसे ही ज्ञान आया, योग की शक्ति आई, अब मैं हर घटना को साक्षी होकर, त्रिकालदर्शी होकर देखता हूं। जो आज का भी वरदान था कि समस्याएं आएंगी, समस्याओं से भाग नहीं सकते, वो एंड तक आएंगी। उनका काम है आना और मेरा काम है उन पर विजय प्राप्त करना। खेल ही ऐसा रचा गया है। इसमें एक सीन हमेशा नहीं चलता। कितना अच्छा होता कि एक ही सीन चलता रहे, सब अच्छा रहे, कोई किसी को नेगेटिव नहीं बोल रहा है, कोई उदास नहीं हो रहा है, कोई डिप्रेशन में नहीं आ रहा है, कोई चिंता नहीं कर रहा है, कोई डर नहीं रहा है, सब परफेक्ट। परफेक्शन केवल सत्युग और त्रेता में होता है, स्वर्ग में होता है। वहां हर चीज एक नेचुरल अनादि रिदम पर चलती रहती है, अपने आप चलती है, इसीलिए वहां हमें किसी तरह का दुख नहीं होता, तकलीफ नहीं होती। हमें पहले ही पता लग जाता शरीर को छोड़ना है और ऑटोमेटिक नेचुरल वे में शरीर को छोड़ते हैं। पर द्वापर के बाद खेल में बदलाव आता है, चेंज आता है, ड्वेलिटी आती है और मनुष्य की पहली लड़ाई होती है खुद से, ड्वेलिटी से, जो चलती रहती है। अब संगम पर बाबा आकर हमें एक नया ज्ञान देता है, अवेयर कराता है, जिससे कि हमें हर समस्या को ठीक करने की युक्तियां बाबा बताते रहता है। जो भी हम मूल्यां सुनते हैं, ज्ञान लेते हैं, उसको धारण करते हैं, उसका स्वरूप बनते हैं और योग से जो शक्ति लेते रहते हैं, अब हमारे लिए इजी हो जाता है कोई भी समस्या को ठीक करने के लिए। इसीलिए बाबा कहता है समस्या का समाधान करना है, कारण का निवारण करना है। इसका अर्थ क्या हुआ? बाबा ने कहा 5 मिनट पहले भी, 1 मिनट पहले भी मैं नहीं बताऊंगा कि क्या होने वाला है। तो खेल क्या है? अनसर्टेनिटी का है। इस समय मैं यहां हूं, अगले सेकंड क्या होगा किसी को नहीं पता, अगले मिनट क्या होगा पता नहीं। अभी इसका रियल एग्जाम्पल देखा कलकत्ता में एक कॉन्सर्ट में, सिंगर हॉल में गा रहा है, 5,000-6,000 लोग हॉल में फुल है और कुछ समय बाद शरीर छोड़ता है। किसी ने नहीं सोचा था ऐसा होगा। तो खेल अनसर्टेनिटी का है। हम सर्टेनिटी से अनसर्टेनिटी में जाते हैं, अगला सेकंड अनसर्टेन है, पर वही ट्रेनिंग बाबा हमें दे रहा है कि तेरे को अनसर्टेनिटी में भी सर्टेन होना है। जो कोरोना काल का पीरियड हम सभी ने देखा, एक अलग ही पीरियड था, हर एक के अंदर चिंताएं आ गई, घबराहट आ गई, पर वो समय भी निकल गया। तो नथिंग न्यू का अर्थ है बाबा ने जो ड्रामा का नॉलेज दिया है, चक्र का ज्ञान दिया है, वो चलता रहता है, वो अनादि है, इटर्नल है, उसको रोक नहीं सकते, वो समय अनुसार चलता जा रहा है, टिक टिक करके आगे बढ़ रहा है। फिर दूसरा ज्ञान दिया बाबा ने आत्मा का। आत्मा एक सॉफ्टवेयर, एक चेतना है, एक एनर्जी है, वेव्स है, और उसमें प्रोग्रामिंग पूरा किया हुआ है, स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, और वो स्क्रिप्ट अपने आप खुलता रहता है। मेरा काम रहता है उस ड्रामा के सीन को साक्षी होकर देखना, डिटैच ऑब्जर्वर के रूप में उसको देखना। जैसे मूवी में जाते हैं, थिएटर में जाते हैं, सीन आते रहते हैं, चलते रहते हैं, उसमें कुछ अच्छे सीन होते हैं, कुछ हीरो होता है, कोई विलन होता है, हम लोग देखते रहते हैं और उसको देखकर हम उसका असर हमारे ऊपर नहीं आता है, क्योंकि हम जानते हैं ये एक ड्रामा है, मूवी है। मैच को भी देखने जाते हैं, खिलाड़ी खेलते रहते हैं और हम खेल डिटैच ऑब्जर्वर होकर देखते हैं। प्रॉब्लम कब आता है? जब मैं इमोशनली, साइकोलॉजिकली उस सीन में ट्रैप हो जाता हूं, फंस जाता हूं, उसको मैं अपने ऊपर ले लेता हूं, पर्सनली ले लेता हूं, तो प्रॉब्लम आते हैं, उस ट्रैप में फंस जाते हैं। जो अभिमन्यु का बताया, अंदर चला गया, उस ट्रैप में चला गया, पर निकलने का रास्ता उसको नहीं पता था। ऐसे ही मनुष्य का नेचर खेलता है, पर जब वो ट्रैप में फंस जाता है तब प्रॉब्लम आते हैं। वो सोचता है ये मेरा गेम है। और बाबा ने हमें क्या सिखाया? वो खिला रहा है और हमारा काम है खेलना। वो करा रहा है, करनहार वो है, मैं केवल कर रहा हूं। इसको सिंपल तरीके से लें, कठपुतली का गेम। हम कठपुतली हैं, वो करा रहा है, बैठे हैं, मैं यहां बैठा हूं, मेरा कोई लेक्चर नहीं है, वो करा रहा है। मैं कल पहले भी मैं यहीं बैठा था 5000 वर्ष पहले, और अभी भी बैठा हूं और फिर बैठूंगा। तो जो हो रहा है उसको एक्सेप्ट करना, उसको मैं ऑब्जर्वर के रूप में देख रहा हूं और एक्सेप्ट कर रहा हूं और आगे बढ़ रहा हूं, उस ट्रैप में फंस नहीं रहा हूं। जनरली हमारा थिंकिंग ब्रेन, सोचने वाला ब्रेन, हमारे इमोशन को कंट्रोल करता है। थॉट्स कंट्रोल द इमोशंस। पर अभी क्या हो गया है? गेम पूरा पलट गया है। संगम के एंड में मैं कहूं 2000 के बाद खेल पूरा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, 2000 के पहले फिर भी ठीक था, 2000 के बाद लोग इमोशनली सेंसिटिव हो गए। अब इमोशन कंट्रोल कर रहे हैं थॉट्स को, और जब इमोशन कंट्रोल करते हैं तो ट्रैप आता है। हमें क्या करना है? हमें दोनों का बैलेंस रखना है, थिंकिंग ब्रेन और इमोशनल ब्रेन। इमोशनल ब्रेन क्या? लोअर ब्रेन है। और थिंकिंग ब्रेन क्या? हायर ब्रेन है। हायर ब्रेन इनपुट देता है तब हम डिसीजन लेते हैं। अब क्या हो रहा है? खबर केवल लोअर ब्रेन तक ही पहुंचती है और वही डिसीजन देके हम कर देते हैं। जैसे एक वीक पहले, अभी 3 दिन पहले भी सेकंड इंसिडेंट देखा और वो बढ़ता जा रहा है, ओवरटेक कर रहा है। ओवरटेक में कुछ प्रॉब्लम आया, वो उतरा और उसको मार दिया। बच्ची ने बच्ची को कुछ बोला, तो ये क्या हो रहा है? खेल पूरा पलट गया, लोअर ब्रेन ज्यादा काम कर रहा है। और वो क्यों काम कर रहा है? जो देख रहे हैं मोबाइल कुछ भी, वो ज्यादा इनपुट दे रहा है, तो थिंकिंग ब्रेन का यूज कम हो गया। तो यहां क्या करना है, हमें दोनों का बैलेंस रखना है। जहां सोचना है सोचो, भावना भी अच्छी है पर थिंकिंग साथ साथ चाहिए। एक मुरली में बाबा ने कहा ज्ञान युक्त भावना। भावना अच्छी चीज है पर उसमें ज्ञान हो, समझ हो, मैच्योरिटी हो, अंडरस्टैंडिंग हो, तब तो खेल देखेंगे। नहीं तो लोग मैच देखते देखते, आजकल जो T20 चलता है, आखिरी बॉल पर अगर सिक्स लगा या न लगा हार्ट अटैक होते हैं। एक टीम वाले सोच रहे हैं होए, दूसरे टीम वाले सोच रहे हैं नहीं हो, तो दोनों में जाता है क्योंकि इमोशनली ले लिया, पर्सनली ले लिया। मैच दो टीम का है पर उसको मैंने पर्सनली ले लिया। एक फुटबॉल खिलाड़ी गोल करके, ये रियल स्टोरी दे रहा हूं, नागालैंड के वहां की है, रियल गोल करके फुटबॉल में इतना खुश हुआ कि उसने जंप मारे, समरसॉल्ट किया और उसका डैमेज हुआ और उसकी डेथ हुई। यानी खुशी भी बैलेंस में चाहिए। तो दोनों चीजों का बैलेंस करते हुए चलें। श्रीकांत बोला, आंध्रा में पैदा हुआ, मछलीपट्टनम के पास के गांव में, बचपन से देख नहीं सकता था, आंखों में डिफेक्ट था। रोज जाता है गांव से शहर में, पढ़ता है, अच्छी पढ़ाई कर रहा है, पास होता जा रहा है। टेंथ में स्कूल वालों ने कहा हम आपको पढ़ा नहीं सकते, हमारे पास टीचर नहीं है। उसने लीगल बैटल लड़ी और 6 महीने तक लीगल बैटल चलती रही और वो जीत गया। फिर 12th पास की, कॉलेज वालों ने कहा हम नहीं पढ़ा सकते क्योंकि वो देख नहीं सकता था, स्पेशल टीचर। उसने MIT बॉस्टन USA में लेटर लिखा और उसकी वहां एडमिशन हो गई MIT में। MIT ऐसा कॉलेज है वर्ल्ड का, हार्वर्ड और MIT, जहां बच्चा घुस गया उसका पैकेज तैयार रहता, उसकी नौकरी तैयार रहती, वर्ल्ड में कहीं भी जाएगा उसको नौकरी करोड़ रुपए की मिलेगी। वो दो कॉलेज ऐसे हैं वर्ल्ड के। MIT में एंट्री हो गई, MIT में ग्रेजुएट करके चॉइस आई कि इंडिया आऊं कि अमेरिका सेटल हो जाऊं। अधिकतर लोगों ने कहा यहीं सेटल हो जाओ, आपको तो जॉब मिल रहा है। वो हैदराबाद आया और बोलेंट इंडस्ट्री डाली, ऑनरेबल अब्दुल कलाम जी के साथ कई प्रोजेक्ट में पार्ट लिया लीड इंडिया में, और उसके वहां काफी जो काम करते हैं उनको भी कुछ प्रॉब्लम है, और अपनी इंडस्ट्री डाली। उसके इंटरव्यू में उसने एक बड़ी अच्छी बात कही, कई फैक्टर हैं वो क्यों टॉप पर चला गया। जो स्ट्रेस जिसको 1000% गांव में पैदा हुआ है और वर्ल्ड की टॉप कॉलेज में पढ़ा, क्यों पढ़ा, कैसे गया। तो उसने अपने एक इंटरव्यू में कहा मैंने अपने ब्रेन को हार्डवायर कर दिया है। हार्डवायर यानी बोला अब मेरे को प्रॉब्लम लगते ही नहीं, मैं टैकल कर लेता हूं। ब्रेन में बिलियन सेल्स है, ट्रिलियन कनेक्शन है, और अगर कनेक्शन अच्छे हो जाते हैं सेल टू सेल, न्यूरॉन टू न्यूरॉन, वो बंदा कुछ भी कर सकता है। और बाबा हमारी तैयारी उस लेवल की करा रहा है कि कभी भी कुछ भी कहीं भी किसी भी तरह का प्रॉब्लम आए, मैं माया शब्द यूज नहीं करता, आउटडेटेड है, माया कुछ होती नहीं है, हमारी खुद की कमजोरी है। जिस फील्ड में हम कमजोर हैं उसको हम लेबल कर देते हैं, कुछ नहीं है, मेरी अगर कमजोरी है उसी रूप में प्रॉब्लम आएगा। जो एरिया मेरा वीक है वहीं हमला होगा। अगर मेरे को किसी को देखता हूं उसका चेहरा देखकर मेरे को रिएक्शन आते हैं तो बाबा क्या करेगा, बार बार उसी व्यक्ति को खड़ा करेगा। जब तक मेरा रिएक्शन अच्छा नहीं हो जाए, स्माइलिंग नहीं हो जाए, उसको देखकर मैं शुभ भावना दूं, तब पेपर नंबर 2 आ जाएगा, वो पेपर 1 खत्म हो जाएगा। पर जब तक मैं रिएक्ट कर रहा हूं वो पेपर होता रहेगा। बाबा प्रमोशन तभी देता है जब हम बेसिक लेवल से ऊपर जाते हैं। तो नथिंग न्यू का अर्थ ही क्या है कि कोई भी सीन देखें उस समय हम दूसरों को ज्ञान तो देते हैं, कल पहले था, 5,000 वर्ष पहले था, नथिंग न्यू, स्टॉप लगाओ, बिंदु लगाओ, बहुत इजी बोल लेते हैं। पर जब खुद पर आता है तब बिंदु लगाना, नथिंग न्यू बोलना, वो बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। और उसकी तैयारी हमें खुद को खुद करना है। चलिए खड़े हो जाएं।
फिर भरपूर बनेगा, ओ भारत फिर भरपूर बनेगा, कोई नहीं कमी होगी, हीरों से आकाश भरा, मोती से भरी जमी होगी, राधा सी हर बाला होगी, सुख शांति प्रेम पावनता की वसुधा पहने माला होगी, हर बालक कृष्ण कन्हैया सा, राधा सी हर बाला होगी, सुख शांति प्रेम पावनता की वसुधा पहने माला होगी, नर होंगे श्री नारायण और नारी श्री लक्ष्मी होगी, नर होंगे श्री नारायण और नारी श्री लक्ष्मी होगी, हीरों से आकाश भरा, मोती से भरी जमीन होगी, कोई नहीं कमी होगी, भरपूर बनेगा। देर नहीं भारत का सितारा विश्व भाल पर चमकेगा नारी शक्ति पूजित होगी सौभाग्य का सूरज चमकेगा अब देर नहीं भारत का सितारा विश्व भाल पर चमकेगा नारी शक्ति पूजित होगी सौभाग्य का सूरज दमकेगा सत धर्म के चारों पांव पर सतयुग की सृष्टि थमी होगी सत धर्म के चारों पांव पर सतयुग की सृष्टि थमी होगी हीरों से आकाश भरा मोती से भरी जमीन होगी कोई नहीं कमी भगवान जहाँ पर आते हैं गीता गंगा गौ गायत्री का फिर से मान बढ़ाते हैं वही जगत गुरु यह भारत है भगवान जहाँ पर आते हैं गीता गंगा गौ गायत्री का फिर से मान बढ़ाते हैं है धन्य धन्य अपनी माटी जो फिर से देव भूमि होगी है धन्य धन्य अपनी माटी जो फिर से देव भूमि होगी हीरों से आकाश भरा मोती से भरी जमीन फिर भरपूर बनेगा कोई नहीं कमी होगी हीरों से आकाश भरा मोती से भरी जमीन होगी भारत फिर भरपूर बनेगा ओ भारत फिर भरपूर बनेगा भारत फिर भरपूर बनेगा
नथिंग न्यू से ड्रामा के हर सीन को मैं कंफर्टेबली ले रहा हूं कोई भी सीन आ रहा है जा रहा है कोई भी प्रॉब्लम परमानेंट नहीं है अगर परमानेंट भी है तो उसमें मैं जीना सीख रहा हूं मेरे में ताकत आ रही है मजबूती आ रही है अभी एक बहन केरला में मेडिकल कॉलेज में एंट्री ली 2016 में 2015-16 में हॉस्टल में रहती है कपड़े टांग रही थी और फ्लोर गीला था वेट था स्लिप कर गई सेकंड फ्लोर से नीचे गिरी टोटल बॉडी कई फ्रैक्चर हुए डैमेज हुआ पैरालिसिस हुआ कई हाईटेक सर्जरी करना पड़ी फिजियोथेरेपी चली 2 साल 2.5 साल 3 साल व्हीलचेयर पर फिर से उसने मेडिकल कॉलेज आई एग्जाम दिए और MBBS करके इस साल बाहर आई। Nothing new। मेरे ख्याल से ऐसा टाइम आ गया, अब आगे चल रहे हैं हम लोग, नथिंग न्यू का कंगन बांध लें, एक मोटा कंगन यहां रख लें, कुछ भी आए नथिंग न्यू, माइंड में याद नहीं आता है उस समय, और उस समय हमारा रिएक्टिव माइंड, लोअर ब्रेन, इमोशनल ब्रेन एकदम रिएक्ट करता है, तू भी बोल, देख ले तू भी, उसी पे लड़ाई होती है, ईगो क्लश होता है और रिएक्शन आते हैं। उस समय अगर मैं एक सेकंड शांत हो जाऊं कि इस घटना को कैसे मेरे को आंसर करना है, चाहे वो नेगेटिव से नेगेटिव सिचुएशन, इमोशनली हम रिएक्ट नहीं करें आज के समय, क्योंकि अब समय बदल गया, लोग टॉलरेट नहीं कर रहे हैं, और आज की आत्माएं ऐसी हो गई, टच मी नॉट, मेरे को बोलना नहीं, चाहे आप उनको राइट बोलो करेक्ट करो फिर भी नहीं, अब समय ऐसा है, क्योंकि आत्माएं वहां से नीचे उतरकर खाली हो रही हैं, परमधाम की जो लाइट है, पावर है परमात्मा का, बढ़ता जा रहा है प्यूरिटी की लाइट, और अगर हम आत्माएं या आत्माएं उसको कैच नहीं कर पा रही हैं, तो डिप्रेशन आ रहा है, घर जाना है, सबको मालूम है, हर एक आत्मा को पता है कि घर जाना है, उसको घर की याद आ रही है, इसीलिए डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है, उसको हमें ठीक करना है, तो हमें हर घटना को अच्छी तरह हैंडल करना पड़ेगा। इसीलिए कहा गया IQ 20% सक्सेस देता है, EQ 80% सक्सेस देता है। IQ यानी जो मैंने पढ़ाई पढ़ी, मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई पढ़ी, डिग्री ली, वो मेरे को केवल 20% सक्सेस देगा, पर 80% सक्सेस कहां से आएगा? मेरे इमोशनल मास्टरी से। मैं पेशेंट को कैसे हैंडल कर रहा हूं, कैसे बात कर रहा हूं, कैसे चल रहा हूं, वो ज्यादा। मैं पेशेंट को कह रहा हूं सब ठीक हो जाएगा, घबरा मत, हाईटेक के साथ हाई टच चाहिए, केवल हाईटेक काम नहीं आएगा, हाई टच काम आएगा। मेरे पास अभी दो कहूं कि प्रॉब्लम है उनको, मैं क्योंकि उनको क्लियरिटी मैं दे नहीं सकता, वो डिस्क्लोज हम लोग नहीं कर सकते लॉ के अनुसार, पर मैं उनको केवल यही बात करते रहता हूं, तुम ठीक हो, यू आर गुड, कुछ नहीं होगा, जो भी आया है आएगा, वो हम सभी इकट्ठे होकर उसको ठीक करेंगे, तो कम से कम चेहरे पर स्माइल तो आ जाती है कि कोई बड़ी बात नहीं है, लोग कह रहे हैं बहुत बड़ा, कुछ नहीं। दादी गुलजार जी हमेशा जब कोई उनको कुछ कहने आता था, मैंने ये अनुभव सुने बहनों से, वो बता रही हैं ये हुआ, ये हुआ, हॉस्पिटल गए फिर आए, दादी ने कहा क्या बड़ी बात है, हर कोई बीमार होता है, हमने ब्रह्मा बाबा को देखा, मम्मा को देखा, उन लोगों ने सुनते हुए उन चीजों को बिल्कुल हल्का कर दिया, विस्तार को समा दिया। अब वो समय है कि हम विस्तार न करें, हम लोगों की हैबिट क्या है, विस्तार करते हैं, वही छोटी बात बड़ी हो जाती है। विस्तार को क्या करना है, और ना बोलना ही नहीं है फिर। जितना हम नेगेटिव को करेंगे उतना नेगेटिव पूरे यूनिवर्स में जाएगा, हम ही कह रहे हैं ना। वातावरण बनता है, वृत्ति से वातावरण बनता है, वाइब्रेशन बनता है, हम कह रहे हैं। और अगर मैं ही बार बार उसको डिस्क्राइब कर रहा हूं, मैं ठीक नहीं, मेरे को ये है, तो क्या होगा, मेरा हर संकल्प पूरे विश्व में जाएगा और विश्व की आत्माओं से मेरे पास वापस आएगा, हाँ हाँ तू ठीक नहीं है, तेरे को ये प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम और बढ़ेगा। कैंसर ऐसा ही फैलता है, पहले छोटा होता है फिर फैलना शुरू करता है, उसके सेल्स मल्टीप्लाई करते हैं और फिर फैलते हैं, क्योंकि हम ही उसको फैलाने की कोशिश करते हैं, बोलते हैं। बोलना नहीं है, कभी भी अपने धन के बारे में, बीमारी के बारे में, संबंधों के बारे में ज्यादा बोलो नहीं। आपके डॉक्टर को बताओ, आपके परिवार को बताओ, बाकी नहीं बोलो, क्योंकि हर संकल्प एक एनर्जी इंफॉर्मेशन लेकर जाता है और वो फिर वापस आता है, यही तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। तो उसको मिनिमाइज करें, और जो बाबा ने ये फॉर्मूला दिया, हर सीन को मैं साक्षी होकर, डिटैच ऑब्जर्वर होकर, पहले भी हुआ था, हो रहा है, उसको लाइटली एक्सेप्ट कर रहा हूं। मेरा कहने का अर्थ है उस पर एक्ट करो, पर रिएक्ट नहीं करो, जिससे कि मेरे हार्ट अटैक हो जाए, स्ट्रेस हार्मोन ज्यादा निकलना शुरू करे, क्योंकि मैं उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा। होती छोटी बातें हैं, बड़ी बात एक अलग है। मेडिकल साइंस में भी अभी कहा गया हमारे अंदर 150,000 प्रोटीन्स हैं, और प्रोटीन डैमेज होते हैं तो बीमारी होती है, और प्रोटीन डैमेज होते हैं तीन तरीके से। एक है टॉक्सिन्स, शरीर में टॉक्सिन ज्यादा बन रहे हैं तो इकट्ठे हो गए। दूसरा ट्रॉमा, कोई घटना ऐसी जो मेरे जीवन में आई हुई बचपन में या अभी, मैंने उसको पकड़ के रख लिया, छोड़ ही नहीं रहा हूं, बार बार उसका डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं, तो वो डैमेज करेगी। तीसरा थॉट्स, हमारे संकल्प, अगर वही संकल्प हमारे बार बार चलते रहते हैं, वही एक संकल्प को मैंने पकड़ लिया और चला रहा हूं, तो वो बीमारी देगा। इसीलिए क्या करना है, छोड़ना आना भी चाहिए। सबसे बड़ा प्रिंसिपल मैंने सीखा, हर चीज को यहां पकड़ के 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट से ज्यादा पकड़ना नहीं है। नाम, मान, शान, जो भी है उसको पकड़ना नहीं है। जगदीश भाई जी यहीं क्लास कराते थे, वो दिन याद आ रहे हैं, बैठकर सब बैठते थे, दादियां सब, हम लोग, उनका ये 3 चीजें मेरे को बड़ी अच्छी लगती हैं, न दिखना है, न दिखाना है, अपने को देखना है। न दिखाना है क्रेडिट मैंने किया, और न दिखना है, दिखोगे, देखो वो लोग भी चेन किन की ले जाते हैं, जो दिख रही है, वो आया मोटर बाइक पे चेन छीन ले गया, दिखेगी नहीं तो कुछ नहीं होगा। यहां भी हम सरेंडर होकर चलते हैं, सरेंडर का अर्थ है सर अंडर, सर में ही प्रॉब्लम है, जितने भी प्रॉब्लम है इंद्रियां यही है, यही ईगो आता है, और ईगो आया दिखाया तो नुकसान तो होगा, वो तो हमला होता ही है, दिख रहा है मारो, दिखेंगे ही नहीं, फरिश्ते की चाल चलेंगे, दिखेंगे ही नहीं, तो कुछ नहीं होगा, कोई हर्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि हम लोग ज्यादा इमोशनली सेंसिटिव लोग हैं और हर्ट ज्यादा होते हैं, फीलिंग में ज्यादा आते हैं, उसमें आएंगे ही नहीं क्योंकि दिख ही नहीं रहे। और अपने को देखना है, कुछ भी हो मेरे को अपने को देखना, किसी ने कुछ कहा भी नथिंग न्यू, उस एक्टर का पार्ट ही था, उसका पार्ट है आत्मा का, वो अपना पार्ट प्ले कर रहा है, मेरे को क्या करना है, मेरे को अपना पार्ट प्ले करना है। मेरे चेहरे की खुशी कोई छीने नहीं, मैं अपना रिमोट कंट्रोल दूसरे को ना दूं, वो दबाएगा फिर। और लोगों में ये हैबिट ही है कि जब खुद खुश नहीं है तो दूसरों को क्या करेंगे, दुखी करेंगे। अगर वो खुद खुश है, प्राप्तियां है, संतुष्टता है, तो वो कोई नहीं दुख देगा, वो ही दुख देता है जो खाली है अंदर से, एम्प्टी है, जो खुद दुखी है। तो हमें क्या करना है, दूसरों को सुख देना है, दुआएं देना है, तो वो भी हमें दुआएं देगा। नथिंग न्यू का अर्थ का फायदा क्या है, हमें दुआएं मिलती रहेंगी। मैं अपना पार्ट पॉजिटिव प्ले करते रहूं, समस्या आई है समाधान करूं और बाबा को थैंक यू करूं। एक पक्षी था, चिड़िया थी, एक रेगिस्तान में वो रहती थी, न पानी था, उसके पंख टूटे हुए थे, खाना नहीं था, बड़ी बीमार थी, खुद को ही वो करती थी क्रिटिसाइज, मैं क्यों पैदा हुई यहां पर। एक दिन एक एंजल पास हो रहा था, उसने एंजल को बताया मेरे को कितने प्रॉब्लम है। एंजल ने कहा मैं भगवान से मिलने जा रहा हूं। तो पक्षी ने कहा आप उस भगवान को बताना मेरे प्रॉब्लम कब खत्म होंगे। गया भगवान से पूछा, भगवान ने कहा उसके सात जन्म तक प्रॉब्लम खत्म नहीं होंगे। एंजल ने कहा ये बताऊंगा तो वो तो और ही वो हो जाएगी, क्या सॉल्यूशन क्या है। तो भगवान ने बताया कुछ भी हो जाए उसको ये कहना है आई एम थैंकफुल टू गॉड फॉर एवरीथिंग, मैं भगवान का शुक्रिया अदा करती हूं हर चीज के लिए। उसने उसको बताया। सात दिन बाद फिर से एंजल उधर से जा रहा है, देखा बगीचा आ गया, पत्ते आ गए, पानी का सोर्स आ गया, वो उसके पंख भी आ गए, थोड़ा उड़ने भी लगी। उसको बड़ा आश्चर्य लगा, भगवान ने तो कहा था सात जन्म तक इसके दुख दूर नहीं होंगे, सात दिन में ही हो गए। तो भगवान के पास गया, बोला आपने तो बोला था सात जन्म, इसके तो ठीक हो गए। भगवान ने कहा, उसने वो फार्मूला पकड़ लिया, आई एम थैंकफुल टू गॉड फॉर एवरीथिंग। वो गिरी रेत पर, गरम रेत पर, तो उसने कहा आई एम थैंकफुल टू गॉड फॉर एवरीथिंग। पंख नहीं उड़ रहे थे, आई एम थैंकफुल टू गॉड फॉर एवरीथिंग। खाना नहीं मिल रहा था, आई एम थैंकफुल टू गॉड फॉर एवरीथिंग। इसलिए उसके सात जन्म के जो नेगेटिव थे वो सात दिन में पूरे हो गए, उसके कर्म भोग कर्म संबंध में आ गए। क्या सीक्रेट था? ग्रेटिट्यूड। जो इस समय दिया गया है उसको मैंने पॉजिटिवली एक्सेप्ट किया, जो है मेरे पास इस समय मैं खुश हूं, संतुष्ट हूं और उसको थैंक्स दे रहा हूं। वाह बाबा वाह, वाह मेरा भाग्य, फिर से हाथ उठाओ, वाह बाबा वाह, वाह मेरा भाग्य, वाह मेरा भाग्य। तो जो नेगेटिव होना भी है तो वो ठीक हो जाता है, अपने आप ठीक होगा, नेचुरली होगा, उसको हमें बोलना नहीं पड़ेगा। तो ग्रेटफुल जब रहते हैं तो यूनिवर्स काम करता है, जब ग्रेटफुल नहीं रहते हैं, क्रिटिसाइज करते रहते हैं, चाहे किसी दूसरे को भी क्रिटिसाइज करते हैं, उसके सामने न करते हुए वो नहीं है उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वो सबसे बड़ा पाप है। और एक यहां नीचे आई थी एक ये ऑरा क्लीनर वाली, उसने बहुत अच्छा एक एग्जांपल रियल दिया। वो यंग लेडी को घुटने के दर्द हो रहे थे और वो अपनी सास की बुराई करती रहती थी, तो उसने कहा ठीक होना है, तो बोला मेरे को एक्यूप्रेशर करो, ये करो, बोला करूंगी। पर उसने एक एक दिन उसको काम देती गई कि उसकी एक अच्छाई को देखना, उसकी बुराई बिल्कुल नहीं करना, और धीरे धीरे उसे 7 दिन में वो ठीक हो गई। और एक्यूप्रेशर वाली कह रही थी मैं तो वही पॉइंट दबा रही थी, पर उसने अंदर जो अपना क्रिटिसिज्म खत्म कर दिया, क्योंकि जब हम दूसरे को क्रिटिसाइज करते हैं उनकी बीमारियां हमारे में आ जाती है, ये पक्का नियम है। इसीलिए कभी भी किसी को भी क्रिटिसाइज नहीं करना, बोलना ही है तो अच्छा बोलो, दुआ दो, शुभ भावना दो, जो बाबा ने सिखाया है, शुभ कामना दो। बाबा का पूरा मंत्र ही ये है, पूरा सीक्रेट ही ये है कि देना ही है किसी को गिफ्ट। अगर धन की नहीं कर सकते, संकल्पों से दुआएं दो, खुशी दो, तो वो रिटर्न में हमारे पास आता है और हम भी, हमारे भी जो प्रॉब्लम है वो ऑटोमेटिक ठीक होंगे। ये लॉ है और लॉ इटर्नल है ये। इसीलिए किसी को भी हमें कुछ नहीं बोलना है, यही बोलना है बहुत अच्छे हो, यू आर गुड। मेरा भी यही है, फोन पे हम बात करते हैं, मेरे पास पूरा यंग ग्रुप है, यू आर गुड, यू आर ब्यूटिफुल, हाथ उठाओ, आई एम वेल्दी, आई एम हेल्दी, आई एम ब्यूटिफुल, आई एम ब्यूटिफुल। कोई भी मेरी वर्थ को कम न कर सके, मेरी जो वैल्यू है, वर्थ है, $1,000,000 है, $1,000,000,000 है, कोई उसको कम न कर सके, तब तो कहेंगे हम कर्मातीत स्टेज पर पहुंचे हैं, कर्म कर रहे हैं, पर कर्म का असर अब हमें नहीं कर रहा। जैसे श्रीकांत का बताया, आई एम हार्ड वायर्ड, अब कोई भी कुछ करता करता है मेरे को कोई असर ही नहीं होता, 1 सेकंड से ज्यादा, 1 मिनट से ज्यादा यहां असर कर गया, मेरे संकल्प चल गए तो मैं तो हार गया। मैंने अपना ही एग्जाम्पल दिया था, बाबा के दिनों में वहां बैरियर लगाते हैं डायमंड हॉल में कि सब लोग पीछे जाएं। मैं भी जा रहा था बैठने, छोटा लड़का था जिसकी ड्यूटी होगी, वो खड़ा था, बोला आप पीछे जाओ, यहां आगे नहीं जा सकते। मैं शांत रहा, पीछे से एक भाई आया, उसने उसको बता दिया और मैं आगे जाके बैठ गया। मैं सोच रहा था 1 सेकंड अगर मैं रिएक्ट कर देता, 1 संकल्प भी मेरा चलता, तो मैं तो मैच हार गया था। और बाबा पेपर ऐसे ही लेता है, अचानक आप अपने उसमें चल रहे हो, अचानक पेपर आएगा, और उस समय अगर हम अपनी अनादि और आदि स्वरूप की स्थिति में टिके रहते हैं और सोचते हैं नथिंग न्यू, कल पहले भी हुआ था, उसने रोका था, अब फिर रोकेगा, वही हो रहा है जो ड्रामा अनुसार हो रहा है, तो वो चीजें हमारे अगर कंप्यूटर में आ जाती है, मन और बुद्धि में आ जाती है, तो जो हम लोग पकड़ के रख लेते हैं और बीमार होते हैं वो नहीं होगा, क्योंकि इमोशनल स्ट्रेस 90% बीमारी का कारण है। मैंने अभी जितने भी 200-300 भाई बहनों को देखा, उनका निकल आया कहीं ना कहीं इमोशनल स्ट्रेस हमारे हार्मोन्स को डिस्टर्ब करती है, और हार्मोन डिस्टर्ब होते हैं तो कोई भी कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फीमेल में इस समय बहनों में मेन कैंसर ब्रेस्ट कैंसर हो गया इंडिया में, नंबर वन है, जो कि नंबर टू था, थ्री था, अब नंबर वन है। क्यों हो गया? क्योंकि इमोशनल स्ट्रेस हुआ, हार्मोन डिस्टर्ब हुए तो चालू हुआ सेल्स का बनना। तो इसीलिए कभी भी हम किसी भी उससे अपसेट ना हो, इरिटेट नहीं हो, खुश रहकर उसको देखें। जो भी समस्या है जिसके कारण आ रही है, निस्वार्थ, जो बाबा का एक शब्द है, हर आत्मा निस्वार्थ है, निर्दोष है, हर आत्मा निर्दोष है ड्रामा में, क्योंकि उसकी गलती नहीं है, वो तो ड्रामा के पार्ट के अनुसार प्ले कर रहा है, उसकी गलती है ही नहीं, वो ट्रैप में फंसा हुआ है तो उसकी गलती कहां। तो हम कोई भी कमेंट किसी के बारे में न करें, चाहे हम सुन रहे हैं फिर भी न करें, ये ज्ञानी है या अज्ञानी है, कभी नहीं करें, वो भी पाप है, वो भी पाप है। आप कैसे कह रहे हो कि वो अज्ञानी है? वो अपने आप में संपूर्ण है, संपन्न है। हम अपने को खाली देखें, अपने से खुश रहें और दूसरों को खुशी बांटते रहें। हमारा काम क्या आ गया संगम पर? केवल एक ही। क्या काम है? दूसरों को खुशी देना। मेरा जॉब यही है, मेरा प्रोफेशन ही ये है। क्या करना है? मेरे चेहरे से कोई दुखी नहीं हो, खुशी बांटते रहूं। मैं लास्ट एग्जांपल देता हूं, दादी जानकी जी का। उन्होंने एक बार कहा था, हॉस्पिटल में जहां लोग अंदर आते हैं वहां एक कुर्सी रख दो और एक भाई या बहन को बिठा दो जो खुश रहता है, और जैसे ही लोग आए वहां उनको वो मुस्कुराते हुए वेलकम करे। उससे बड़ी दवा नहीं है, उससे बड़ी कोई दवा नहीं है। मैं आपको बता देता हूं, आने वाले समय में मेडिसिन बहुत कम काम करेगी, रेजिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। काम क्या करेगा? अपना खुद का। वन थर्ड हीलिंग बॉडी में खुद होती है, नेचुरल होती है, नेचुरल होती है, अपने आप होती है। चलिए तो खत्म करते हैं, टाइम हो गया। नथिंग न्यू का अर्थ है, हर सीन को देखो जैसे हुआ ही था पहले, कल पहले हुआ था, अभी कोई ये नया सीन नहीं है। हमें पता रहता है ना, बता दिया जाता, उधर जाओगे ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, हो रहा है। तो उसको हम पॉजिटिवली एक्सेप्ट करें और अपनी खुशी को कम ना करें, क्योंकि सेवा अभी वाणी की नहीं है, वो भी पूरी हो गई। अब सेवा क्या है? चलन और चेहरे से, वाइब्रेशन से। जो इसमें मास्टर है वो नंबर वन लेगा और वही साक्षात्कार कराएगा। ओम शांति।
जिंदगी का खेल हंसते हंसते खेलिए। नमः।